हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांत ने जैसे ही अनाही का कॉल रिसीव किया, उधर से अनाही की गुस्से से भरी आवाज गूंजी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, वेदांत जी, आपने रूहान जी को ऐसे ही पुलिस के साथ क्यों जाने दिया? जब वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि इन्हें लेकर जाना है, तो आपको उन्हें रोक लेना चाहिए था या खुद जाना चाहिए था? रूहान जी को अकेले क्यों भेजा? वेदांत उधर अपना सर पकड़े बैठा था, मानो उसका दिमाग फटने को हो रहा हो। उसने बेहद थके हुए और हताश अंदाज में जवाब दिया, प्लीज अनाही, रूहान को गलत समझना बंद करो, उसने कुछ नहीं किया है। वो लड़की कुछ ज्यादा ही बदतमीज थी। हम लोगों ने अभी अभी सीसीटीवी फुटेज देखी है और तुम यकीन नहीं करोगी कि वो लड़की असल में क्या करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले अब यहां से जा चुके हैं, अब तुम भी फौरन यहां आ जाओ। मैं चाहता हूं कि वो लड़की रूहान से सबके सामने सॉरी बोले, उसके बाद ही हम यहां से जाएंगे, वरना इस लड़की की इज्जत तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में नीलाम कर दूंगा। ये बोलते वक्त वेदांत का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी आवाज में एक खतरनाक चेतावनी थी। वहीं दूसरी तरफ अनाही की आंखों में हैरानी के भाव तैर गए थे। उसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन वेदांत की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे चल रहे रूहान को देखा। रूहान अपनी मासूम पलकों को बार बार झपकाते हुए बस उसी की तरफ देख रहा था। वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह सर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे अगर उसने अपने कदम थोड़े से भी इधर उधर रखे तो अनाही फिर से उसे वहीं सड़क पर छोड़कर चली जाएगी। उसकी चाल में एक अजीब सा डर और हिचकिचाहट थी। अनाही को ऐसी घूरते देख रूहान ने घबराहट में अपना गला तर किया और डरते हुए कहा, अब क्या हुआ मैडम जी, क्या शिकायत कर रहा है आपका वो दोस्त मेरी? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस लड़की को सॉरी बोलूं तो कभी नहीं, मैं उसे कभी सॉरी नहीं बोलूंगा। चाहे आप मुझे जेल भेज दो, मैं चला जाऊंगा जेल, कोई बात नहीं है। इससे पहले भी मैं 5 दिन जेल में बिता कर आ चुका हूं, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा इंसल्टेड फील हो सकता है कि आपका पति जेल जाता है और ऐसी लड़ाई झगड़ा करता है, उसके लिए मैं आपसे रोज सॉरी बोलूंगा, लेकिन उस लड़की से नहीं। अनाही ने उसकी बातों पर कुछ नहीं कहा और एक गहरी सांस लेकर फिर से अपना चेहरा सामने की तरफ कर लिया। बेचारे रूहान को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी बातों का अनाही पर कैसा असर हो रहा था। वो खामोश हो गया, पर फिर भी वो अपना सर खुजाते हुए फिर से कुछ सोच रहा था, ताकि वो कुछ ऐसा अच्छा बोल दे जिससे अनाही उसे गुस्से से ना देखे। वहीं अनाही मन ही मन अजीब सी कश्मकश में थी। वो सोच रही थी कि अगर सच में रूहान ने कुछ नहीं किया है और वो लड़की ही गलत है, तो वो रूहान से कैसे नजरें मिलाएगी? उसने तो सबके सामने बिना सोचे समझे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया था। क्या रूहान को उसके थप्पड़ का बुरा नहीं लगा? वो कब से बस एक ही रट लगाए जा रहा है कि अनाही उसे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या उसे ये नहीं बोलना चाहिए था कि अनाही उसे थप्पड़ कैसे मार सकती है, वो भी सबके सामने? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट क्यों नहीं पहुंची? ये सब सोचते सोचते अनाही का सर बुरी तरह दर्द करने लगा था। 5-7 मिनट पैदल चलने के बाद वो वापस उसी बिल्डिंग के सामने आ गए थे जहां ये सारा तमाशा हुआ था। वहां खड़े उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने फिर से रूहान को देखा, जो अब पहले के मुकाबले थोड़ा ठीक नजर आ रहा था, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर थी। फिर उन्होंने अनाही की तरफ देखा, जो अपना दुपट्टा सही करते हुए तेज कदमों से अंदर की तरफ जा रही थी। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इसीलिए कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा लगता है बेचारा पागल हो गया है बीवी के प्यार में, इसे पागलखाने तो नहीं भेजेंगे ना ये लोग, कितना मासूम सा लग रहा था अभी। वो दोनों बॉडीगार्ड बड़ी बेचारगी से रूहान को देख रहे थे, क्योंकि उसकी हरकतें देखकर यही लग रहा था जैसे उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक ना हो और बस अनाही के इशारों पर किसी कठपुतली की तरह चल रहा हो। अंदर वेटिंग एरिया में वेदांत सोफे पर बैठा था और अदिति उसके सामने सर झुकाए अपराधी की तरह खड़ी थी। वो बिल्डिंग अदिति की ही थी, लेकिन इसके बावजूद वहां का माहौल ऐसा था जैसे यहां का असली मालिक वेदांत हो और अदिति कोई मुजरिम। उन दोनों के अंदर आते ही वेदांत जल्दी से सोफे से उठते हुए रूहान के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। वो रूहान के करीब आकर बोला, आई एम रियली सॉरी रूहान, मैंने पता नहीं तुझे गुस्से में क्या क्या बोल दिया, और अनाही ने तो तुझे। बोलते बोलते वेदांत रुक गया। उसे एहसास हुआ कि अनाही के थप्पड़ का जिक्र करना शायद माहौल को और खराब कर देगा। उसने एक गहरी सांस ली और बात बदलते हुए हल्के गुस्से में बोला, ये लड़की तुमसे सॉरी बोलेगी। रूहान ने जल्दी से चेहरा उठाकर वेदांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। उसने मासूमियत से पूछा, आप लड़की किसे बोल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है मैडम जी मुझे सॉरी बोलेंगी और मैं उनका सॉरी एक्सेप्ट भी करूंगा? कभी नहीं। वो मुझे क्यों सॉरी बोलेंगी? जब मैंने गलती की है तो वो मुझे थप्पड़ मार सकती हैं, ये उनका हक है, और आपको हम दोनों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपका हम दोनों के बीच में बोलना। अनाही ने अफसोस में अपने सर पर हाथ मार लिया। ऐसा लग रहा था रूहान का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वेदांत अदिति की बात कर रहा था, ना कि अनाही की। अनाही ने चेहरा घुमाकर रूहान की तरफ देखते हुए उसे समझाने वाले लहजे में कहा, रूहान जी, वेदांत जी इस लड़की की बात कर रहे हैं, अदिति की। ये लड़की आपसे सॉरी बोलेगी। ये सुनकर रूहान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने तुरंत गुस्से से कहा, ये तो आपसे भी सॉरी बोलेगी। इतना बोलकर रूहान ने गुस्से में फिर से अदिति को देखा। उसकी आंखों में वही पुराना पागलपन उतर आया था, जैसे उसका मन कर रहा हो कि वो फिर से उसका गला पकड़ ले। रूहान के तेवर देखकर अदिति जल्दी से उनके सामने आई और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगी, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो किया मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरा सॉरी एक्सेप्ट करके सबके सामने इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं करेंगे। वेदांत ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए दांत पीस कर कहा, ऑफकोर्स अगर तुम अपनी लिमिट में रहोगी तो हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने लिमिट क्रॉस की उस दिन तुम्हारा जो हश्र होगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। अनाही को तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति ने ऐसी कौन सी गलती की है, इसीलिए वो अदिति को पूरी तरह जज नहीं कर पा रही थी। लेकिन माहौल इतना भारी था कि उसने और सवाल करना ठीक नहीं समझा। उसने गहरी सांस भरते हुए थकान से कहा, ठीक है, जिसकी भी गलती थी जो भी हुआ सबने सॉरी भी बोल दिया, क्या अब हम घर चल सकते हैं? मेरा बहुत तेज सर दर्द कर रहा है। वेदांत ने हाँ में सर हिलाया और फिर ऑफिस से बाहर जाने के लिए मुड़ा। उसके पीछे पीछे रूहान और अनाही भी बिल्डिंग से बाहर निकल आए। रूहान अब बार बार अनाही की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अनाही के सरदर्द को लेकर चिंता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो रूहान ने जल्दी से अनाही के माथे पर अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, लाओ मैं दबा देता हूँ आपका सर, दर्द कम हो जाएगा। अनाही ने रूहान का हाथ पकड़कर अपने सर से हटाते हुए कहा, नहीं प्लीज रूहान जी, अभी के लिए आप बस चुप हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना ही कुछ कहना है। इतना बोलकर अनाही ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर सीट से टिका लिया। रूहान भी सिवाय अनाही को एकटक देखने के और कुछ नहीं कर पा रहा था।
वेदांत गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और एक झटके से उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसे इस वक्त इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि अनाही की मौजूदगी की वजह से वो अदिति पर ज्यादा गुस्सा नहीं निकाल पाया, वरना शायद रूहान की तरह वो भी आज अदिति पर हाथ उठा देता।